ध्यायाध्यानकियये कम्मकलङ्कटये नित्यनिरञ्जननानमौ ते परमात्मनमे।
अत सर्वेषां परम पुरुषाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपादयते। अब जितने भी परम महापुरुष हैं उनका मोक्ष ही एकमात्र ध्येय होता है, मोह ध्येय होना नहीं चाहिए। हरि हर बंधु विजनवर
वीर
मुनिवर बिंद विभव परम निरंजन मनुधरी हरे हर ब्रह्मा जनवर मुनिवर उनके समूह ये भव्य परम निरंजन एकमात्र मन को जो अपने रखता है निरंजन भाव में वही एकमात्र मोक्ष ध्यान करने के योग्य है, बाकी सब ठीक है। सिद्ध अवस्था में किस रूप में परमानंद का मतलब अवलोकन के द्वारा अर्थ पर्याय की जो प्राप्ति होती है वह प्रति समय होती रहती है, बस बाकी जो ज्ञान तो ज्ञान रहेगा अब उसमें कोई परिणाम नहीं है। ये अर्थ पर्याय अलग वस्तु ज्ञान उनकी होती नहीं, वो अवलोकन की होती है। आला पद्धति देख लो, जय दौलावर पढ़ लो, कुछ नहीं होता। यही तो पढ़ना है आप लोगों को, और आला पद्धति अपने ढंग से थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, जय धवला का कुछ प्रकरण पढ़ लीजिए, अर्थ पर्याय का अर्थ ही होता। व्यंजन पर्याय कभी वह मिटती नहीं, वह अमिट रहेगी। अर्थ पर्याय किसमें होती है देख लो ना, क्या बात हो गई। सभी द्रव्यों की बात अलग है, द्रव्य में जो है ज्ञान गुण दर्शन गुण इत्यादि इनमें होती है कि बता दो, नहीं है तो बस हो गया, संकोच क्यों रह गए। चलो देखो, और दूसरी बात, अर्थ पर्याय को कहीं भी क्षय भाव नहीं कहा, ये भी बात ध्यान रखना। थोड़ी सोच करके विचार करके बोला करो, क्या कहा? अर्थ पर्याय को क्षय भाव कहा नहीं कहीं भी, पारिणाम विभाव को क्षय भाव कहा नहीं। लिख रहा है क्या? नहीं तो इसका ले लो, लिख लो। चलो आगे, हरिहर है, हरिहर ब्रह्मा लोग भी सब जिनवर है, जिनवर भगवान भी, मुनिवर वृंदान्य भव्य शेष भव्य भी जितने भी, ये थे सर्वे किम कुर्वन्ति, ये सारे सारे क्या करते हैं? कहते हैं परम निरंजन अभिधाने निज परमात्म स्वरूपे मन धरी, मन धर मन को रख देते हैं कहां पर? परम निरंजन अभिधान जो निज परमात्मा है उस स्वरूप में ही रखते हैं। विषय कषाय गच्छत तत्, विषय और कषाय में जाता हुआ जो मन है उसको व्यावृत्य उसको मोड़ करके धृत्वा उसको पकड़ करके पश्चात पुनः मोक्षमेव छायन्ति, मोक्ष का ही ध्यान करते रहते हैं सर्वे भी, सभी जितने भी हैं सब सच्चता। हरिहरादय सर्वे भी प्रसिद्ध पुरुषा, हरिहरादि जितने भी प्रसिद्ध पुरुष है, ख्याति पूजा लाभादि समस्त विकार पुजारी ने शुभ, ख्याति है पूजा है लाभ है कीर्ति है ऊब ये सब कुछ छोड़ करके शून्य होकर के शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जनित आत्मद्रव्य सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्पक समाधि समुत्पन्न वीतराग सहजानंद एक सुख रस अनुभव न क्या कहा था कि जो समस्त विकल्प ज्ञान से शून्य होने के उपरांत शुद्ध है बुद्ध है ऐसा एक स्वभाव वाला निज आत्म परमात्म द्रव्य उसका सम्यक श्रद्धान करना ज्ञान करना इसका अनुचरण करना, इस रूप में जो अभेद रत्न त्रय होता है जो कि निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद एक सुकार रूप में अनुभव करते हुए पूर्ण कलश के समान भरितावस्थे, पूर्ण कलश को देखा आपने, पूर्ण कलश को, हाँ पूरा कलश नहीं, हाँ हाँ पूर्ण कलश तो सब लोग देख लेंगे, लेकिन पूर्ण कलश से कलश जो कि भरा हुआ है भैतावस्थे निरंजन शब्दाविधि परमात्मा ध्याने, निरंजन शब्द का जो अभिधेय वाचभूत परमात्मा है उसकी ध्यान में स्थित्वा स्थित होकर के मोक्षम एव ध्यायन्ति, और ये ही निधिध्यास है ध्यान लगाते हैं। अयम अत्र भावार्थ, ये भावार्थ है, यद्यपि व्यवहारेण संकल्प अवस्थायां, यद्यपि व्यवहारण के अपेक्षा से संकल्प दशा में वीतराग सर्वज्ञ स्वरूपम तत्प्रतिबिंबानी, संकल्प दशा में वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप जो उसके प्रतिबिंब है, तन मंत्र अक्षराणि च, उनके मंत्र अक्षर इत्यादि को तद आराधक पुरुषार्थ धेया भवंती, और उसके जो आराधक पुरुष हैं वे भी धेय होते हैं, फिर भी तथापि वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ति गुप्त परम सामान समाधि काले निःशुद्धात्मा एव धेय। वाह, ये परिसरणम का अर्थ समय सार में जो निकाला था वो यहाँ पर कर दिया गया, व्यवहार नहीं किया पीछा से संकल्प दशा में या प्राथमिक भाव में जो भी सर्वज्ञ देव है उनके बिंब है अथवा उनके वाच्यभूत पदार्थ को बताने वाले जो मंत्र हैं अक्षर हैं उनकी आराधना करने वाले पुरुष भी है जो पंच परमेश्वर हैं इनका भी ध्यान होता है, इसलिए ये भी ध्येय है। हमारे लिए कौन ध्येय है? पंच परमेश्वर ध्येय है, व्यवहार की दृष्टि से ये ध्येय है, निश्चय की दृष्टि से बिल्कुल वीतराग परमात्मा जो अपने आप में शुद्धात्म तत्व वही है। निर्विकार वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्त गुप्त, जिस समय तीन गुप्तियों में लीन हो जाता है उस समय बाहरी पंच परमेश्वर को याद न करके निःशुद्धात्म तत्व को ही एकमात्र विषय बनाया जाता है, विषय को ध्येय बनाया जाता है। निःशुद्धात्मा एव ध्येय, निःशुद्धात्मा ही ध्येय है, दृष्टि में ये रहे, लेकिन निःशुद्धात्मा को यदि हम ध्येय नहीं बना पाते हैं तो पंच परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। पंच परमेश्वर को भी भूला निःशुद्धात्मा तो हाथ लगाए नहीं तो कहां जाएगा, वो दुनिया की पंचायत में लग जाएगा। दुनिया की पंचायत में लगने से क्या होता है? आर ज्ञान रौद्र ज्ञान के अलावा कुछ हाथ में लगता नहीं है। इसलिए तो ये है शरण, भुवनत्रय भी मोक्षम मुक्त्वा अन्य परम सुख कारण नास्ति निश्चित है। तीन काल में और तीन लोक में मोक्ष को छोड़ करके अन्य कोई सुख का कारण है ही नहीं। देहो या निधि वह जाति नवी तो कह कारण कोई मुख मैवी एक पर तेन में चिंतई सो। ये जीवाना त्रिभुवनी त्रिभुवन में नति अस्ति नवि सुख कारण को, कारण और कुछ नहीं है, क्या कर छोड़ करके मुख मुए में मोक्ष को छोड़ करके जीवों के लिए सुख का कारण इस संसार में और कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए उस मोक्ष का चिंतन बार बार करो। मोक्ष का चिंतन का अर्थ क्या है? बंधन से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। वर्तमान में अपने को बंधन में बंधे हुए हैं, हम अपने स्वभाव का अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या? कर्मों से बंधन होने के कारण अवधिक भावों का चिंतन हो रहा है, ये हमारे स्वभाव नहीं है और मेरा स्वभाव तो इससे अतीत है, ऐसा मोक्ष का हमेशा हमेशा चिंतन करना चाहिए। वो जैसे बनता है अतिथि वह जिसने संस्कृत में लिया है, लेकिन जति बोल हाँ कहने रहने दीजिए, जति देखा उतना उसी का नाम अस्थि है। हाँ अस्थि तो है, संस्कृत पढ़ेंगे तब आप क्रमश में जति हो तो हाँ ठीक है दादा दे दीजिए। देने के उपरांत भी अपने को जो पाठ आया है उसी को रखना। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, उसका अर्थ यही है कि अस्ति कहीं कहीं पर नत्ति कह देते, नत्ति का अर्थ भी अति है, नत्ति कह न अति ऐसा नहीं है, अति अति देते। त्रिभुवने जीवानाम अस्ति नैव नास्ति, तीन लोक में लोगों जीवों के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं है? सुखस्य कारणम, सुख का कारण किमपि वस्तु, किम कृत्वा मोक्षम मुक्त्वा एकम, मोक्ष को छोड़ करके त्रिभुवन में जीवों के लिए कोई भी सुख नहीं है। नियमेन तेन एव कारणेन, इसी कारण से चिंतय, तुम चिंतन करो, किसका चिंतन? मोक्षम एव त्रिभुवने भी मोक्ष मुक्त्वा निरंतर अस्य सुख कारणम, मोक्ष को छोड़ करके निरंतर यानी हमेशा हमेशा अच्छे वाला सुख का कारण अन्यत अन्य कोई भी पंचेन्द्र विषय अनुभव रूपम, पंचेन्द्र के विषय का अनुभव करने रूप किमपि न अस्ति, नहीं है। तेन कारणेन, इसी कारण से हे प्रभाकर भट्ट, वीतराग निर्विकल्प परम सामायिके स्थित्वा, राग से रहित विकल्प से रहित परम सामायिक में स्थित होकर निःशुद्धात्म स्वभाव का ही ध्यान तुम करो। अत्रा प्रभाकर भट्ट, कुछ प्रभाकर भट्ट बोलता है, क्या बोलता है? हे भगवान, अतीन्द्रिय मोक्ष सुखम निरंतरम वर्णते, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का वर्णन आपके द्वारा निरंतर हो रहा भवत भी, तच्च न जायते जनैः। अब लोगों को तो समझ में तो आता ही नहीं, अतीन्द्रिय निर्विकल्प परम समाधौ चित्त्वा, वीतराग निर्विकल्प परम समाधौ चित्त्वा, ये कुछ समझ में नहीं आता महाराज, कुछ दिखाओ, कुछ दिखा ताकि आपका व्यापार हो जाए, हम खरीद ले, दिखता तो कुछ है ही नहीं, अरे आप सुख 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 कह रहे हैं, समझ में नहीं आता, ये घर से निकाल लेते हैं महाराज, चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं, सुख तो सामने वही दिखता है जो हमारे पास है, दिख ही रहा है, यहाँ पर आने के उपरांत वो दिख रहा है, देखो, और यहाँ पर आने के उपरांत आप जो बार बार प्रयास करें कुछ दिखता तो ही, कुछ तो दिखाओ बिल्कुल यहाँ पर आने के उपरांत भी घर में दो बना करके रखे हैं, वो सब दिख रहा है, त्रैकाली का, त्रैकाली का आनंद तो उसी में है, यहाँ पर आए हैं लेकिन शाम के लिए प्रबंध है, इसलिए तो आनंद के साथ बैठे हैं, जाना है तो करना है, निश्चित बात है, सबको नहीं दिखता, तो तुम्हारे तो कल का दिखता बिल्कुल निरंतर होने भगवत भी सच नहीं क्या है जन भगवान आ भगवान बोलते हैं देखो तुम क्या बोलते हैं हे प्रभाकर भट्ट वो भी पुरुष निर्व्याकुल चित्त प्रस्तावित व्याकुलता से रहित होकर के पंचेन्द्रिय भोग सेवा रहित तिष्ठति स केनापि देवदत्तेन पृष्ट वो कोई भी देवदत्त के द्वारा पूछा गया सुखेन चित्तो भगवान अब देखो क्यों क्यों भैया ठीक चल रहा राम राम सुख साथ साथ घने खम्मा घने खम्मा मालवा में घने खम्मा बोलते हैं मतलब ठीक ठाक चलता है घने खम्मा पहले शुरुआत में तो हमें इससे लगने लगा हम सामने जोड़ करके भाई घने खम्मा का अर्थ क्या होता है जब गंगापुर उतर के चले गए थे उदयपुर के साइड बोले बार बार बोलने लगे तो क्या इसका अर्थ होता मतलब सुख साता है अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोलते उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल व्याकुल चित्त नहीं शांति के साथ बैठा तो पूछा जाता है क्यों ठीक है नहीं खाया नहीं पिया नहीं कुछ भी नहीं पूछा गया क्यों भैया ठीक है नहीं ऐसा ऐसा जो उपवास भी कर ले तो भी ठीक होता धारणा धारणा भी तो गुस्सा पाती है ये भी खाने के उपरांत भी धारणा ही है मैंने खाया इसलिए शांति रखते हैं ज्ञान न रहे तो पेट भरने के उपरांत भी क्यों ठीक है
तो याद नहीं, अब खाया तो खाया तो है ही नहीं, इसे खाना लाओ। तो खाने के उपरांत यदि विस्मरण हो जाए तो दुख होता है, हो सकते है हाँ, क्योंकि उसको याद नहीं है मैंने खा लिया, इसे वो भी धारणा हो सकती है। देखो जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग इस अर्थ में सुख मान रहे हैं, उसी प्रकार हम परमार्थ में सुख मान रहे हैं। ये पागलपन है तो वो पागलपन, ये क्या जिस तरह दिखने में क्या आ रहा है, क्या संवेदन कहते हैं, उसी प्रकार हमें भी संवेदन हो रहा है। अच्छा क्या तुम्हें क्या संवेदन बताओ, हमने क्या दिया, हमें भी तो हमने दिख रहा है, देखो हमने दिख रहा है बिल्कुल, क्या कुछ नहीं। अरे अरे पेट में जो है पत्थर रख लिया, रख लिया तो मान लिया कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या अच्छा। ये तो बात है, देखो देवदत्त प्रश्न सुखी सुतो भगवान तेन उक्तम सुखमस्ति सुखमस्ति तत् सुखम आत्मोत्थम, वह सुख आत्मोत्थ माना जाता है। कस्मादिचित तत्काले स्त्री सेवादी स्पर्श विषय नास्ति, उसके उस समय पर स्त्री विषयक या और भोजन विषयक आदि आदि सुख का अभाव होने से, भोजन आदि जितेंद्र विषयों की नास्ति, जितेंद्र विषय भी नहीं है, विशिष्ट रूप गंध माल्य आदि घ्राणेन्द्रीय विषयों की नास्ति, विशिष्ट रूप है गंध है माला है घ्राणेन्द्र के विषय भी वहां पर नहीं है, द्रव्य स्त्री रूप अवलोकनादि लोचन विषयों की नास्ति, स्त्री है पुरुष है आदि आदि के लोग अवलोकन करने के जो विषय नेत्रेंद्र का वह भी अभाव को प्राप्त है, श्रवण रमणीय गीत वाद्यादि शब्द विषयों की नास्ति, रेडियो वगैरह सुन नहीं रहा है, गीत गाने वगैरह सुन नहीं रहा है, नृत्य आदि को सुन नहीं रहा, ये भी कैसे। इति तस्मात् ज्ञायते तत् सुखम आत्मोत्थम इति। अब देखो नृत्य यदि आप देखते हैं तो कौन से इंद्रिय का विषय बनेगा, इसलिए तो कहा कम से कम दो इंद्रिय का तो है ही, लेकिन नेत्र इंद्रिय का लिए रूढ़ कर दिया आप लोगों ने, लेकिन यदि वह नहीं है तो मन का भी है और नेत्र इंद्रिय का भी है और कर्मेंद्र का भी। तस्मात क्या है इससे क्या होता, सुखम आत्मोत्थम इति, सुख आत्मा से उत्पन्न हुआ रहता है निश्चित, किंच एक देश विषय व्यापार रहता नाम, एक देश विषयों के व्यापार से रहित होने वाले तद एक देश से न आत्मोत् सुखम उपलब्धते, वह एक देश से आत्मा से उत्पन्न सुख को प्राप्त करते हैं। वीतराग निर्विकल्प स्वमेन ज्ञान रहता नाम रहता नाम, राग से रहित विकल्प से रहित स्वमेन ज्ञान में जो रत है पुनः निरवशेष पंचेन्द्रीय विषय से मानस विकल्प जाल निरोधे सति, अवशेष से रहित पंचेंद्र की विषयों का मानस संबंधी जो विकल्प जाल है उसके निरोध होने पर विशेषेन उपलब्धते, विशेष रूप से वह आत्मोत्सुक की उपलब्धि होती है। इदं तावत् स्वसंवेदन प्रत्यक्ष गम्यम, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष गम्य ही है, अन्य किसी वस्तु के द्वारा इसका लक्षण नहीं आ सकते। सिद्धानाम च सुखम पुनः अनुमान करना, देखो अब आ गया, देखो अंडरलाइन कर दीजिए, पहले नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, उसी से बता देंगे सब। सिद्धों को जो सुख होता है, सिद्धों को जो सुख होता है वह सुख पूर्ण सुख है, जो कि अनुमान गम्य ही है या आगम गम्य है। आज कल वो चौथा और चौदवा सब एक सिद्धों का भी एक सब एक सब एक देश का अर्थ ये है कि एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का आलम्बन लेने वाले जो होते महाराज उनका, और जो निर्विकल्प समाधि में जरूरत होते हैं उनका, किंतु सिद्धों का जो सुख होता है वह तो अनुमान गम्य ही है। यहाँ पर बैठ करके किसी भी गुणस्था में रहो, सिद्धों का जो सुखों का अनुभव होता है वह यहाँ पर होगा ही नहीं। यही वहां की ज्यों का त्यों वहां पर भी दिया है। अनंत अनुमति का अभाव तो बहुत दिन के लिए हो गया, और आहार करते समय क्या होगा, वो भी सुख होगा और ये भी सुख होगा, एक साथ होना चाहिए ना। सुनो, पंचेंद्र की विषयों की ओर जिस समय उपयोग जाएगा उस समय उसी का सुख होगा। वैसे आसक्ति जिसक्ति है तो आप रख लीजिए, भोग में भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, देव में ऊपर चले जा कोई भी आसक्ति नहीं होती, देखने में नहीं आता, ये आसक्ति तो आप लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, व्यापार से जिस समय आप लोगों के इंद्र के व्यापार बाहर चलेंगे, निश्चित है उन्हीं को सुख मान करके आप चल रहे हैं। ध्यान नहीं लगा, सुनो सुनो, मैंने ये कहा, वो पूर्ण सुन लो, ये कहा कि वहां पर तो आ सकते ही नहीं। आप ध्यान लगाते हैं इसे कह देते हैं, लेकिन आपके संकल्प के अनुसार देखा जाता है तो अनुपात से वह तत्संबंधी सुख नहीं कर सकता। हाँ, सामय करने लगे, सामय का वह एक प्रकार से रूप धारण कर रहा है, अभी सामय कर नहीं रहा, सामयिक है वो। विषय व्यापार नहीं होते हुए भी, विषय व्यापार नहीं होते हुए भी उसका संकल्प जो है उससे हट नहीं सकता। ये पहले कह दिया, परिग्रह भी एक व्यक्ति है, परिग्रह कोई व्यक्ति है, इतने समय के लिए छोड़ दिया, इतना तो निर्विकल्प हो गया, लेकिन इसके उपरांत का क्या है उसका दिल बताता है, निश्चित है उससे बंधा हुआ रहता है, वो कहने के लिए कह दिया जाता है उसको। हाँ, इस अपेक्षा से कि जो अवृत्ति है उस अपेक्षा से वह बहुत ऊपर उठा हुआ, इतना तो हम कह सकते हैं, जो अवृत्ति है उस अपेक्षा से बहुत उठा हुआ, लेकिन जिसका शुद्धोपयोग में मन नहीं है ऐसी सकल वृत्ति के लिए भी उन्होंने यही कहा। ये तो बहुत ही दूसरी की बात हो गई, जो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर रहा और राग आदि की प्रवृत्ति हो रही है, ऐसे मुनि महाराज की इच्छा है समय दर्शन भी हो तो फिर उस संबंधित सुख आत्म सुख नहीं प्राप्त होता, इसलिए उसमें कोई संबंध नहीं होता। तथा ये मुक्तात्मना, कितना तो ध्यान रखना है, ये शास्त्रवृत्ति में भी आया, अनुमान गम्यम एव सिद्धानाम यत्तुकम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष गम्यम इदं तावत् स्वसंवेदन प्रत्यक्ष गम्यम। यह जो विषयों के व्यापार से दूर उठ गया यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, और सिद्धों का जो सुख है वह अनुमान गम्य है, उनका जो है सुख हमारे संवेदन में नहीं आ सकता। ये इसका दो तीन बार इसका वर्णन तात्पर्यवृत्ति इत्यादि में दिया गया है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से मानसिक प्रत्यक्ष भी परोक्ष ही है, किंतु इंद्रिय व्यापार की अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष माना जाता है, किंतु वह ये ध्यान रखना वह वस्तुतः प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, इसलिए वह शुद्धों का सुख तो अनुमान गम्य ही है। तथा मुक्तात्मना शरीर इंद्रिय विषय व्यापार अभावे भी, मुक्तात्माओं को शरीर इंद्रिय विषयों का व्यापार होने पर भी सुखम अस्थिति साध्यम सुख होता है यह साध्य। तस्मात् तो ये कैसी बात, इदानीं पुनः वीतराग निर्विकल्प समाधि स्थानां परम योगिनां पंचेन्द्रिय विषय व्यापारा भावेपि, सिद्धों को सुख कैसा होता है, तो जैसे कि वर्तमान में भी राग से रहित वीतराग बनते हुए, विकल्प से रहित निर्विकल्प होते हुए समाज में रत जो परम योगी होते हैं, देखो विशेषण लगाए परम योगी, उनके पंचेंद्रिय विषय का व्यापार होने पर भी, व्यापार का अभाव होने पर भी स्वात्मोत वीतराग परमानंद सुखोपलब्धि थी। मान्यता के ऊपर ही आधारित है, हम इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकते, अभी दिखाओ ऐसा कहा उन्होंने, दिखा नहीं सकते, इससे विश्वास कर लो ये पंचेंद्र के विषयों से उपरत होकर के ऊपर उठ करके गिरी गुफा में बैठ करके कुछ कर रहे हैं, निश्चित है इनको अलौकिक सुख प्राप्त हो रहा है, ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, कि हम स्वसंवेदन की जो चीज है उसको हम किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं कर सकते, उसका वर्णन कुछ भी नहीं कर सकते। कहा जा सकता है कि सिद्धों को जिस प्रकार है उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि में रत परम योगी है उनको भी स्वसमिरन सुख है। अत्र इत्थम भूतम सुखम ये उपाधेय एकमात्र उपाधेय भावार्थ तथा आगमे उक्तम आत्मोत्तम अतीन्द्र सुखम ये प्रवचन सार में कहा भी गया ऐसे माद समोत्थम विषयातीतम मनो अमन अनंतम अवगच्छन्नं च सुहं शुद्धो वपसिद्धानम्। जो शुद्धोपयोग में प्रसिद्ध है उनको ही इस प्रकार का सुख प्राप्त होता अतिशयम। अतिशय मैंने किसी के साथ उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, संसार में सब सुखों से वो ऊपर उठा हुआ। आद समुत्थम आत्मा से उत्पन्न हुआ, विषयातीतम विषयों से अतीत है, अनुपमम अनुपम है, अनंतम शांत नहीं है, अविच्छिन्नम छूटने वाला नहीं है, ऐसा शुद्ध ओवप सिद्धान शुद्धोपयोग के द्वारा जो सिद्ध हुए हैं उनको इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अब क्या बात सुख नहीं है, इसलिए कहा ना सिद्धाना ये सुखम तत् अनुमान गम्यमेव आगाते भी चाहिए। चार जले कह रहे हैं महाराज अभी जले हैं है? देखो आध जले का अर्थ जो होता है जले मतलब जल में आधे हैं अभी अजले हैं जीनू के गोला उदाहरण तो बताया था कि जब मठा बन जाता है नवनीत का गोला निकाल दिया और उसमें चोट छूटा है तो वो तैर रहा है क्या नहीं, उसका कितना हिस्सा ऊपर दिख रहा है, आधा नहीं दिखता, ध्यान रखना देखा नहीं तुम लोगों ने वन थर्ड दिखता, वन थर्ड टू थर्ड तो डूबा हुआ रहता है, है? क्यों तैर तो रहा है, निश्चित बात है वो तो कहीं कहीं बार तो थोड़े से जो है ईद की चांद के समान ही दिखता है, देखने जो दिखता है। इसी प्रकार अभी अधजले है वो पूरी जल जाए तब ठीक है। हाँ हम लोगों के अपेक्षा से ठीक है, प्रीवियस है वो पूर्ण नहीं, दो परीक्षाएं होती है, धाते अपना कर लिया ठीक है, निश्चित तो हो गया ये, वैसे हमारे भी निश्चित हो गया औरों को भी निश्चित हो गया, ऐसे निश्चित तो बहुत सारे प्रकार के थे। तो हारून कहता है कि आज तो आधा हमारे को हम चल चुके हैं क्योंकि सप्तम गुणस्थान हो गया, सप्तम गुणस्थान यदि आगम के अनुसार देख लेते हैं तो होना चाहिए, अब सात गुणस्थान रह गए, चौदह गुणस्थान होते हैं, आधा तो चल चुके हैं, अब देखो कुछ और मेहनत कर लें आधा और चल जाए, अब चलना नहीं होता है इनका ये कहना है, अब तो सात सीढ़ी तो चढ़ गए अब चलना है, अब जो है बिल्कुल लिफ्ट फैसले हुए हैं दो श्रेणी है, हम अब चलना नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल लिफ्ट लगी हुई है चपक श्रेणी मर जाते हैं। हाँ बिल्कुल वो कुछ बोल नहीं रहे हम बोल रहे हैं बस इतना ही है, है ही नहीं। जीव तो पर मुनि तो परमा पहला कलंक विमुक्ता नानी बोलता। परमात्मा का लाभ होना ही मोक्ष सुख है, उत्कृष्टियों को ऐसा तुम जानो, कर्म कलंक से विमुक्त जो हुए हैं ऐसे ज्ञानी लोग साधु लोग कहते हैं, तुम इस बात को सुनो। परम निवीन मोक्षम जीव को वही परम मोक्ष मानो तुम जानी ही जानो, कम यह परमात्मा
जो परम आत्मा का लाभ है वही एकमात्र परम सुख है। इत्थं भूतं मोक्षे केषां भवति। इस प्रकार का मोक्ष किसको होता है?
तो ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्म कलंक विमुक्तानां।
ज्ञानावरण दर्शनावरण बीजनी मोहिनी आदि आठ प्रकार के कर्मों के कलंक से जो मुक्त हो जाते हैं, इत्थं भूतं मोक्षं के भवन्ति। हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं क्या? और कोई कह रहे
नहीं,
वो कहते हैं
इंद्रासन ज्ञानी ब्रवंती ही। राग से रहित होने के उपरांत, विकल्प से रहित होने के उपरांत उनको कोई पक्षपात नहीं रहता, इसलिए वो
उनका कहना है कि ऐसा सुख होता हो।
स्वतंत्र
उपरांत ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी के उपरांत जगह आदि सत्तम जगत एक जैसा बहु अजय ब्रह्म पदा प्रतेश्वर ये लोग उनको स्वयं को थोड़ा है कि ऐसा सुख होता हो। उपरांत ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी के उपरांत जगह आदि सत्तम जगत एक जैसा बहु अजय ब्रह्म पदा प्रतेश्वर ये लोग उनको निर्देश स्वयं को थोड़ा सा अच्छे ढंग से याद करो। जगाद तत्व सब जगाद तत्व जगते अर्थ जगते जगाद तत्व
बहु वजह ब्रह्म पदांग्रतेश्वर। जब ब्रह्म पद के अमृतेश्वर हुए
फिर तत्व का व्याख्यान किया। इन्हीं को बोलते हैं तीसरा संवेदन ज्ञानी, राग से रहित स्वतंत्र ज्ञान को धारण करने वाले वैज्ञानिक जो प्रकार कहते हैं साधवा। साधु लोग ऐसे कहते हैं, भगवान के साधु हैं ऐसे कहने वाले। तथा ही केवल ज्ञान आदि अनंत गुण शक्ति रूप से कार्य पार सुख ये
परमात्मा भव जी की।
केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के व्यक्ति रूप जो कार्य समय सार है वही परमात्मा तत्व का मुख्य लाभ है, ऐसा समझ लेना चाहिए। सच के शाम तो किनको होता?
स्वरूप प्रवृत्ति समस्त विकल्प रहित ध्यान ना। छोटे के उपरांत में भूतपूर्व लगा लेते हैं
पहले के।
अच्छा पहले
सामने सामने है तो पहले और दूसरा क्या है?
व्यवहार नहीं कहते जैसे गृह आश्रम के ये। अच्छा क्या आश्रम मित्र मन लगा हुई है सीधी सीधी तो कह नहीं नहीं व्यवहार तो संभालना चाहिए।
इसी व्यवहार के कारण समझदार ने कहा यह व्यवहार ही तो तुम्हारे लिए परेशान कर रहा है, ये निषिद्ध है व्यवहार, छोड़ दो इसको क्योंकि भूत की ओर भी ले जा देता है, छूट जाएगा। अभी तो छूट नहीं रहा, छोड़ने के उपरांत भी नाता जोड़ और रहा है।
ये कहाँ के? ये हम हमारे ही
है तुम्हारे तो मतलब
अच्छा घुमा देते हैं सीधा सीधा तो यही कह रहे थे कि ये हमारे हैं।
फिर बात कह रहे हैं कि ये
कभी कभी ये हमारे गाँव कहा कोई तुम्हारा बड़ा हो सकता है, ये हमारे देश के कह दो, ये हमारे लोग के
ऐसा कह दो
कहना पड़ता है। इसी व्यवहार के पीछे अनंत काल निकल गया महाराज। हाँ बताए बिल्कुल। पुत्र है कलत्र है ममति के ममत रूप जो विकल्प जाल है जिससे रहित होते हुए ध्यान के द्वारा भाव कर्म द्रव्य कर्म कलंक रहिताना। भाव कर्म द्रव्य कर्म कलंक से रहित होते हुए भव्याना भवती थी भव्यों को ही प्राप्त होता है ज्ञान न करती थी। इस प्रकार ज्ञानी लोग कहते हैं अयम अत्र मोक्ष अत्र अयम एव मोक्ष अयमत्र एव मोक्ष ऐसा भी कहा अत्र अयम एव मोक्ष दो ही तो शब्द है क्या बात है
संस्कृत में ये कोई भी बाधा नहीं है कैसे भी आप लिख दीजिए सब अपने अपने में पद विद्रह पद बने हुए हैं।
अत्र अयम एव मोक्ष अथवा अयमेव अत्र मोक्ष
एवमात्र मोक्ष
पूर्वोक्तस्य अनंत सुखस्य उपादे भूतस्य कारणत्वात् उपादे
അയമത്രാമേവ
ഏകമാത്ര ഉപാധേ അനന്ത സുഖ ഹി ഉപാധേ ഭൂത ഹോനെ വഹി ഏകമാത്ര യാ പർ സുഖ ഹെ ഉപാധേ സമജന മോക്ഷ ഫൽ മോക്ഷ മാർഗ ആദി പ്രതിപാദക തൃതീയ മഹാധികാര മധ്യേ സൂത്രദശ്യേന മോക്ഷ രൂപ നിരൂപണ പ്രസ്ഥാനം സമാപ്തം.
इस प्रकार मोक्ष मोक्ष का फल मोक्ष का मार्ग उसके प्रतिपादन करने वाला जो द्वितीय महाधिकार है उसमें दस सूत्रों का यह प्रकरण मोक्ष स्वरूप के निरूपण के रूप में चला गया. तत्व मोक्ष अनंत चतुर्थ स्वरूपम फलम दर्शी थी. उसी मोक्ष का अनंत चतुर्थ स्वरूप होता है वह मोक्ष ऐसा आगे कहा जा रहा है.
ണു അനന്ത സമഗുണ തുട്ടോപര
സാധോഖലോ
അച്ഛന.
मोक्ष फल में और कोई दूसरी वस्तु नहीं है अनंत चतुष्टय को छोड़ करके. दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, इनका कोई भी विलय नहीं होता. ये परम शाश्वत मोक्ष फल है, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, दूसरा और कुछ नहीं है.
दंशन इत्यादि केवल दर्शनम केवल ज्ञानम अनंत सुखम एतत् उपलक्षणम अनंत वीर्यादि अनंत गुणाः.
केवल ज्ञान और केवल दर्शन और केवल सुख इत्यादि ये वहां को उपलक्षण आप समझ लीजिए. ऐसे अनंत गुण से युक्त वह चतुष्टय होता है.
एतत् गुण कदम्बकम एक समयम अपि यावत् न तृच्यते.
इस प्रकार का सुख अनंत चतुष्टय आत्मा एक समय के लिए यहाँ पर नहीं टूटता. यस्य मोक्ष पर्यायस्य अभेदेन सुख मोक्ष पर्याय के अभेद रूप से तत् आधार जीवस्य वा. ये मोक्ष करो अथवा इसका आधारभूत जीव कहो. तदेव केवल ज्ञानादि स्वरूपम वही केवल ज्ञानादि स्वरूप शाश्वतम मोक्ष फलम भवति. शाश्वत मोक्ष फल होता है. विज्ञो तत्र अत्यन दासु दूसरा अंग और कुछ नहीं है. तस्य अनंत ज्ञानादि मोक्ष फलस्य अन्यत् द्वितीयम अधिकम किमपि नास्ति. उसको छोड़ करके अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर इत्यादि मोक्ष फल को छोड़ करके अन्य कोई भी दूसरा वहां पर नहीं रहता. अयम अत्र कदम मैंने सपो निरंतर अयम अत्र भावार्थ अनंत ज्ञानादि मोक्ष फलम ज्ञात्वा अनंत ज्ञानादि मोक्ष फल को जान करके समस्त रागादि त्यागेन समस्त रागादि त्याग के साथ तदर्थमेव उसी मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर शुद्धात्म भावना कर्तव्य. अंतर रहे निरंतर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए. एवं द्वितीय महाधिकारे इस प्रकार द्वितीय महाधिकार में मोक्ष फल कथन रूपेण स्वतंत्र एक सूत्र का यह व्याख्यान हुआ. अथा अनंतरम एकोनविंशति सूत्र पर्यंतम अब इसके उपरांत 19 सूत्र पर्यंत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यान स्थलम कथते. निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, इसका कथन करने वाला आगे का स्थल आ रहा है.
जीवः मोक्षे उवरो दंशणुनानुचरे ते पुनोचिन्नि आपो मुनि निश्चये एहवो.
यहाँ पर अनुस ઉચ્ચાર જે છે ચંદ્રબિંદુ નીચ એ ઐસા બોલેંગે તો છંદ ભંગ હો જાયગા, દો હાથ ટૂટ જાયગે. નીચ એ જીવ કા મોક્ષ હેતુ, મોક્ષ કે હેતુ ક્યા હૈ? દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર, યે તીનો મિલ કરકે હી આત્મા હૈ. ઇસલિયે નિશ્ચય સે આત્મા હી મોક્ષ માર્ગ હૈ, એસા સમજ લેના ચાહિયે. જીવ જીવ મને જીવાના અથવા એક વચન પક્ષે જીવ હી જીવસ હેવ મોક્ષ હેતુ કારણ વ્યવહારણેન ભવતિ ઇતિ ક્રિયાધારણ. વ્યવહારણે કે અપેક્ષા સે યહ હોતા હૈ, એસા ક્રિયા કા અધ્યયન કર લેના. કથમ ભૂતમ તત વરમ ઉત્કૃષ્ટમ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તયમ. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, યે તીન ઉને તાનિ પુન ત્રીણિ અપિ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણિ આત્માનમ અવેદનેન મન્યસ્વ. અવેદને કે વિવક્ષા મે ઉની તીનો કો આત્મા એસા સમજ લો, અથવા આત્મા કો હી ઉન તીનો કા આધાર હોને સે સબ સમજ લો, મોક્ષ માર્ગ હોય છે. હે પ્રભાકર ભટ્ટ, નિશ્ચયનેન એવ મુક્તમ ભટ્ટમ દૃષ્ટતે. નિશ્ચયને કે અપેક્ષા સે એસા હી કહા ગયા હૈ. ઇદમ અત્ર તાત્પર્યમ વેદ રત્ન ત્રયાત્મકો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. દેખો યહાં એક નિષ્કર્ષ હૈ, તાત્પર્યવૃત્તિકાર અથવા બૃહદ્રવ્ય સંગ્રહકાર અથવા યે ઇન દોનોં કા યહી એકમાત્ર તાત્પર્ય હૈ કે વેદ રત્નત્રય કો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ ઔર અભેદ રત્નત્રય કો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ માનતે હૈ. સાધકો ભવતી, જો ભેદ રત્નત્રય હોતા વહ સાધક હોતા ઔર ઉસકા સાધ્ય નિશ્ચય રત્નત્રય હોતા. અભેદ રત્નત્રયાત્મક પુનઃ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ. અભેદ રત્ન ત્રયાત્મક જો મોક્ષ માર્ગ હૈ વહ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ હૈ, જો કિ સાધ્યો ભવતી. તો સાધ્ય પહેલે હોતા હૈ કે સાધન પહેલે હોતા હૈ? સાધન પહેલે હોતા, સાધના સાધન સે હી સાધ્ય કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. ઇસલિયે વ્યવહાર રત્ન ત્રય પહેલે, વેદ રત્ન ત્રય પહેલે ઔર વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ પહેલે, અભેદ રત્ન ત્રય બાદ મે, નિશ્ચય રત્ન ત્રય બાદ મે, નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ બાદ મે હોતા હૈ. एवं निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गयो हो, इस प्रकार निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्गों का साध्य साधक भाव ज्ञातव्य. एक साध्य है, दूसरा साधक है. स्वर्ण स्वर्ण पाषाणवत इति, स्वर्ण निश्चय है साध्य है, तो स्वर्ण पाषाण उसका व्यवहार है जो साधन है. उसके बिना आप किसको तपाएंगे? तपाएंगे किसको? सोने को. सोने को तपा करके सोना क्या खरीदा जाता, प्राप्त किया जाता? नहीं, तो व्यवहार को तपाया जाता है. पाषाण को, जो स्वर्ण पाषाण, उसको तपाना चाहिए. लेकिन तपाते समय ये ध्यान रखना चाहिए स्वर्ण पाषाण तपाना चाहिए, नहीं तो ये जिस किसी पाषाण को तपा दोगे तो इंद्र में समाप्त हो जाएगी, तो खाती खाली हाथ बैठ जाओगे. उस स्वर्ण पाषाण को तपाओ जिसमें से स्वर्ण निकल सकता है और निकलने की पूरी संभावना रहती है, उसको व्यवहार कहा. उसको तपाने के उपरांत वह दूर हो जाता है और स्वर्ण स्वर्ण निखर करके आ जाता है. स्वर्ण स्वर्ण पाषाणवादी तथा च उक्तम सम्मदंसननानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने वमहाराणि छेदो तद्देवयो निवो अप्पा. इद्रम संग्रह की गाता है चल. सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, चरण ये मोक्ष के कारण है, जानो. किससे? व्यवहारा व्यवहारात. ऐसा था वो अत्यंत अलूप हो जाता प्राकृत में. निश्चय तो निश्चय नहीं, दो निश्चय की अपेक्षा से सत्यमय हो दर्शन ज्ञान चारित्रमय नियो अप्पा, अपना जो आत्म तत्व है वही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा समझ लेना चाहिए. अब देखो एक उदाहरण देते हैं. व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, निश्चय एक प्रकार का होता है. इसको नहीं समझने का प्रतिफल ये होता है, व्यवहार तो व्यवहार, व्यवहार तो व्यवहार, ऐसा कहा जाता है. ये गलत बात है. व्यवहार साधन है तो निश्चय साध्य है, तो साधन ही साध के रूप में परिणत होता है। ये भी एक कहावतियों की दर्शन ज्ञान चारित्रिक तीनों मिलकर के शुद्धोपयोग बनेंगे। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आप में कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, विभेदात्मक है। अब देखो व्यवहार दो प्रकार के, जैसे नवनीत की प्राप्ति कैसे होती है, किससे होती है? दही को मथने से होती है। दही को मथने से नवनीत की प्राप्ति होती है। दही जब तक है तब तक नवनीत है क्या? और दही के बिना नवनीत है क्या? दही के बिना तो नवनीत है ही नहीं, दही से ही नवनीत है। दही व्यवहार है, दही साधन है और नवनीत साध्य है। दही में नवनीत नहीं ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो ये केवल जो है कहने मात्र में है। दही के मंथन के बिना नवनीत की उपलब्धि नहीं, लेकिन जब तक दही रहेगा तब तक नवनीत का दर्शन नहीं हो सकेगा। लेकिन ये ध्यान रखो, दही कहां पर रखा? भुगोने में, मिट्टी में। अब उस मंथन के लिए व्यवहार में मिट्टी भी चाहिए और मथानी भी चाहिए और रस्सी भी चाहिए और हाथों में ब्लड सर्कुलेशन भी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नहीं हो तो और गड़बड़ हो जाएगा। चलाना चलाना तो चाहिए कि नहीं? हाँ। और दूसरी बात, एक साथ दोनों हाथ छोड़ दो तो और मुश्किल हो जाएगा। एक हाथ लेफ्ट राइट होना चाहिए। ये भी व्यवहार है। अब देखो, भुगोनी भी व्यवहार, रस्सी भी व्यवहार, मथानी भी व्यवहार। ये व्यवहार साधन रूप नहीं है, ये निमित्त रूप में है। ये उपादान नहीं है, ये निमित्त है। ये निश्चय नहीं है, बाहरी है ये। इसलिए इनके होने के उपरांत भी नवनीत की कोई व्याप्ति नहीं रहती है। खाली लेकर के बैठ जाओ। नानीर के मथन से नीत पाते नवनीत पाठ है। नीर के मथन से कभी भी नवनीत की उपलब्धि नहीं है। अब व्यवहार, एक व्यवहार होता है और एक व्यवहार निश्चय को प्राप्त कराने वाला होता है। ये दोनों व्यवहार मिलकर के ही निश्चय का दर्शन करा देते हैं। यदि नवनीत को प्राप्त करना चाहते हैं तो मिट्टी भी चाहिए और रस्सी भी चाहिए और ये भी चाहिए। किंतु ये जो ही काम होता है त्यों ही बाहर रह जाते हैं, लेकिन स्वयं ही दही नवनीत के रूप में उपादान कारण है। इसलिए भेद रत्न के साथ व्यवहार कह करके वे फालतू है ऐसा नहीं कहना। किंतु ये ध्यान रखना, जहां पर मिट्टी वगैरह जो है उसके साथ नवनीत की प्राप्ति हो ये नियम नहीं है, क्योंकि दही पहले चाहिए। लेकिन दही के साथ साथ ये भी आवश्यक है तभी नवनीत की उपलब्धि होगी। तो नवनीत की उपलब्धि दो कारणों के द्वारा हो गई, एक तो मथानी इत्यादि के माध्यम से और एक दही के माध्यम से। दही उपादान हुआ जो कि साधन हुआ। इस साधन के भी ये साधन माने जाते हैं। जब नवनीत की प्राप्ति हो गई तो ये सब साधन जो है यूं ही रह जाएंगे, ये निमित्त माने जाते हैं। ये सारे सारे निमित्त माने जाते हैं, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल में रह जाएंगे ये। किंतु दही जो थी वह बिल्कुल नवनीत के रूप में परिणत हो गए। ऐसा व्यवहार जो कि निश्चय की ओर ले जाने वाला है, उस व्यवहार को हाथ धोकर के छोड़ना नहीं चाहिए तुम लोगों को। तब तक दही को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक नवनीत की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो इसमें नवनीत नहीं है, देख लोगे तो नवनीत कहां से ऊपर से थोड़े आने वाला है। ये बात है, वर्तमान व्यवहार 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 व्यवहार, ये जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया नहीं है, ये मट्टी की क्रिया है। भीतर जो है नवनीत है उस दही में और उसको हिलाने से मंथन करने से उत्पन्न होता है। इसलिए दान है, पूजा है, क्रिया है, व्रत है, अनुष्ठान है, तप है, चलि सब व्यवहार है। बिल्कुल जैसे मटकी जगह बिल्कुल गए भी थे हो गए। हाँ, चेतन की क्रिया है कि कैसे की क्रिया, क्या पता है? ऐसा नहीं, जो कोई भी बात होती है उसको सोच समझ करके अपने को समझ। हाँ, इतना निश्चित है जब तक दही को रखोगे तुम तीन काल में होगा नहीं, हमने इसका लाभ नहीं होगा। इसलिए कि हमेशा अपने को अपने उद्यम करते रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल मंथन, उसकी दृष्टि वहीं पर होती है, बीच बीच में, बीच 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 में मथानी उठा करके देखते हैं, उसके ऊपर कणाधार गण होने के कण लगे रहते हैं, उसको देख करके वो रख देते हैं, भैया रख दो उसको, नहीं पानी नहीं है, पानी जो है ऊपर से उसको गर्म कुनकुना पानी से धो देते हैं ताकि वो अभी चिपके नहीं ऐसा।
और आपको अभी समय हो गया है, महावीर भगवान की जय।